डाइनिंग टेबल पर आयशा, मिस्टर सिंघानिया और राधिका बैठे हुए थे। वो डिनर करते हुए इशिका के बारे में बात कर रहे थे। इशिका आजकल अभिमन्यु के क्लोज रहने लगी थी, तो आयशा को डर था कि कहीं उसका ये झूठ सामने ना आ जाए कि अभिमन्यु ने इशिका को ओशन यूनिवर्सिटी से निकलवाया था। आयशा अपनी परेशानी में खोई हुई थी कि मिस्टर आदर्श सिंघानिया के पास पृथ्वी का कॉल आया। खाना खाने की वजह से उन्होंने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया था। आदर्श ने काफ़ी नरम लहजे में उनसे कॉल करने का कारण पूछा था। तभी पृथ्वी की सामने से सख्त आवाज़ आई, मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपकी बेटी आयशा सिंघानिया से ये जानना है कि मेरे बॉस ने उन्हें ये कब कहा कि इशिका को ओशन यूनिवर्सिटी से निकलवाया जाए या फिर उसे गोवा में रहने का कोई हक नहीं है। अभिमन्यु अपने ऊपर उठे इल्ज़ाम को इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने तुरंत पृथ्वी से कॉल करवा दिया था। पृथ्वी की बातें सुनकर आयशा का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। आदर्श ने उसकी तरफ देखा तो वो सब समझ गया था। उसने ज़बरदस्ती हंसते हुए कहा, बच्ची है, शायद उसे सुनने में कोई गड़बड़ हो गई होगी। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। रही बात इशिका की स्टडीज़ की, तो वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। मैं कल ही ओशन यूनिवर्सिटी जाकर बात कर लेता हूँ। आयशा का झूठ पकड़ा गया था। आदर्श ने जैसे तैसे बात को संभाल लिया था। पृथ्वी ने कॉल रखने से पहले कहा, पता नहीं कि मिस आयशा सिंघानिया से सुनने में गड़बड़ी हुई है या उनसे ये जानबूझकर हुआ है। जो भी हो, आगे से अगर ये हुआ या किसी भी गलत मामले में मिस्टर अभिमन्यु राजवंश का नाम उछाला गया तो अच्छा नहीं होगा। उम्मीद है आप अपनी बेटी के किए की सज़ा उसे ज़रूर देंगे। आदर्श आगे कुछ कहता उससे पहले पृथ्वी ने कॉल कट कर दिया। वहीं कॉल कट होते ही आदर्श ने गुस्से से आयशा की तरफ देखा। वो मासूम बनते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आयशा रोते हुए बोली, डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस दिन बहुत डर गई थी जब इशिका बार बार अभिमन्यु राजवंश के पीछे जा रही थी। मुझे डर था कि कहीं उसकी वजह से मेरा रिश्ता न टूट जाए। उसका जो भी सोशल स्टेटस है, उसकी वजह से मुझे सबके सामने नीचा देखना पड़ता है। ऐसे में राजवंश फैमिली भी मेरे बारे में गलत सोचने लगती। बस तभी मैंने वो सब। आयशा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जो भी हो, तुम्हें अभिमन्यु राजवंश का नाम बीच में नहीं लेना चाहिए था, आदर्श ने सख्ती से कहा। ये पहली बार होगा जब आदर्श ने आयशा से इतना सख्त लहजे में बात की थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध ली और फिर आदर्श की तरफ देखकर धीमी आवाज़ में कहा, मैं उनका नाम बीच में नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अगर मैं सीधे सब कुछ आपको बता देती तो आप उसे डांटते नहीं। उसका सोशल स्टेटस जो भी हो, वो आपकी बेटी है। बकवास है ये, आदर्श ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो तुम हो। मेरा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। राधिका को आदर्श की बातें अच्छी नहीं लगी। उसने आदर्श के हाथ पर अपना हाथ रखकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए कहा, जो भी हो, वो तुम्हारी बेटी है और तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते हो। आदर्श तुरंत नामे सिर हिलाकर बोला, जानता हूँ, बेवकूफ़ी में मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई थीं, लेकिन इतने सालों में भी तुम मुझे नहीं समझ पाई। उस औरत ने मेरे साथ धोखा किया था और मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। उसे इस घर में रहने की इजाज़त दे दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ मायने रखती है। मेरे लिए मेरी फैमिली तुम और आयशा हो। आदर्श ने कभी भी मालविका और ऋषिका को अपना नहीं समझा था। वहीं उनकी बातें दूर खड़ी मालविका ने सुनी तो गुस्से में उसने मुठियाँ कस लीं। मालविका ने आदर्श की तरफ गुस्से से देखा। वो उसे अपने बचपन से जानती थी और उसी से प्यार करती थी, लेकिन आदर्श ने कभी उसे अपना नहीं समझा। वो राधिका से प्यार करता था। अचानक मालविका के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं। जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तब वो आदर्श के पास आई थी और उससे उसे और अपने बच्चे को अपनाने की गुहार की थी। आदर्श ने उसे वहां से भगा दिया था, लेकिन बाद में वो राधिका के पास गई और राधिका का रहमो करम ही था जो वो आज इस घर में थी। मालविका मन ही मन बोली, आदर्श ने कभी इशिका को बाप का प्यार नहीं दिया। अच्छा हुआ ना जो मैंने दोनों बच्चों को बदल दिया, वरना मेरी बेटी की वही हालत होती जो आज उनकी खुद की बेटी की हो रही है। सोचते हुए मालविका के चेहरे पर ईविल स्माइल आ गई, जिसे वो काफ़ी मुश्किल से काबू कर पा रही थी। मालविका ने सब कुछ इतनी सफाई से किया था कि आदर्श को कभी पता नहीं चला था और आगे ना ही पता चलने वाला था कि इशिका उसकी असली बेटी है। वो जिसे इतना प्यार कर रहा है वो तो मालविका की बेटी थी। राधिका का बदला उसने राधिका की बेटी इशिका से लिया, जो आज दर-दर की ठोकरें खा रही थी। मालविका अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा राधिका ने आयशा की तरफ देखकर सख्ती से कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, पर तुम्हारी गलती है और तुम अपनी गलती के लिए इशिका से माफ़ी मांगने वाली हो। पागल हो गई हो राधिका, हमारी बेटी क्यों किसी से माफ़ी मांगेगी, वो भी इशिका जैसी लड़की से, आदर्श ने गुस्से में कहा। गलती चाहे आयशा की ही क्यों ना रही हो, लेकिन वो आयशा को इशिका के सामने झुकते हुए नहीं देखना चाहते थे। उनकी बात पर सहमति जताते हुए मालविका उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है आयशा को इशिका से माफ़ी मांगने की। वैसे भी सिंघानिया फैमिली ने उस पर इतने एहसान किए हैं, गलती तो उसने की थी जो मिस्टर अभिमन्यु राजवंश के पीछे जाकर उन्हें परेशान कर रही थी। उसका नाम सिंघानिया फैमिली से जुड़ा हुआ है तो उसे इसकी इज्जत को बचाकर रखना चाहिए। मालविका के बर्ताव को देखकर राधिका ने आह भरी। उन्होंने आगे कोई बहस नहीं की। उनका खाना हो गया था तो आयशा उन्हें कमरे में ले जा रही थी। रूम में आते ही राधिका ने आयशा से कहा, तुम्हारे डैड तुम्हारी कितनी भी फेवर लें, लेकिन तुमने गलती की है और मैं चाहती हूँ कि तुम इशिका से माफी मांगो। लेकिन मॉम, आयशा ने मना करना चाहा, लेकिन राधिका ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं कल इशिका से मिलने का सोच रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? आयशा ने गहरी सांस लेकर बिना मन के हामी भर दी थी। वो जानती थी कि वो अपने डैड की सजा से तो बच सकती है, लेकिन राधिका से बचना आसान नहीं था। वो अपने उसूलों पर चलने वाली औरत थी। आयशा का उतरा हुआ चेहरा देखकर राधिका ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, तुम नक्श को डॉक्टर मर्चेंट से मिलवाना चाहती हो ना? चलो कल दोनों काम निपटा लेंगे। डॉक्टर मर्चेंट से भी डिनर हो जाएगा, नक्श को बुला लेना और इशिका से माफी भी मांग लेना। डॉक्टर मर्चेंट से मिलने की बात सुनकर आयशा के चेहरे पर तुरंत चमक आ गई। वो मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच मॉम, मैं नक्श को इस बारे में बता दूंगी। राधिका को गुड नाइट बोलने के बाद आयशा वहां से अपने कमरे में जाने लगी। उसने वसुधा राजवंश को नाराज करके 2% शेयर खो दिए थे, लेकिन डॉक्टर मर्चेंट को नक्श की टीम में शामिल करवाने के बाद वो सबका भरोसा फिर से जीत सकती थी। डॉक्टर मर्चेंट का नक्श की टीम में होना उन 2% शेयर से ज्यादा मायने रखता था। वहीं आयशा के जाते ही राधिका ने श्रुति की तरफ देखा जो उसके लिए दूध और दवाइयां लेकर आई थी। उसे देखकर राधिका ने कमजोर और उदास आवाज में कहा, मेरी तबीयत खराब रहने के चक्कर में मैं आयशा का ध्यान नहीं रख पाई, उसे डिसिप्लिन और संस्कार नहीं सिखा पाई। वो इस बात को भुला नहीं पा रही थी कि आयशा ने झूठ बोला जिसकी वजह से इशिका को भुगतना पड़ा था। अब तुम ज्यादा सोच रही हो राधिका, श्रुति ने सिर हिलाकर जवाब दिया। आयशा एक अच्छी लड़की है, दूसरों के बारे में सोचती है। हाँ, आजकल के बच्चे थोड़ा झूठ बोलने लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल की बुरी है। इशिका कभी झूठ नहीं बोलती है, राधिका ने धीरे से कहा। फिर वो खांसने लगी।
राधिका को खांसी आना शुरू हो जाती थी तो जल्दी से बंद नहीं होती थी। श्रुति उसके पास आई और प्यार से उसका कंधा सहलाकर कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सब कुछ वक्त पर छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। चलो अब आराम करो। श्रुति ने राधिका को दवाइयां दी और सुला दिया था। अगली सुबह इशिका की आंख खुली। वो हॉस्पिटल रूम में थी। उसे राधिका का मैसेज मिल चुका था। वो आज इशिका से मिलने आने वाली थी। मैसेज देखकर इशिका ने मन ही मन कहा, पूरे 9 साल हो जाएंगे जब मैं राधिका आंटी से मिलने जा रही हूँ। पता नहीं वो मुझे देखकर नाराज होगी या अच्छे से बात करेंगी। इशिका अपनी कश्मकश में खोई हुई थी कि तभी अभिमन्यु वहां पर आ गया था। इशिका को नहाने और अपनी डेली रूटीन के लिए घर जाना था, तो उसे देखते ही वसुधा ने कहा, लड़के तुम ऐसा करो, मेरी बहू को उसके घर छोड़ दो ताकि वो तैयार होकर आ सके। ठीक है, चलिए मिस सिंघानिया चलते हैं, अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर कहा। वैसे भी वो वही करता था जो वसुधा उसे करने के लिए कहती थी। वसुधा को बाय बोलकर इशिका अभिमन्यु के साथ नीचे जाने लगी। उन्हें पार्किंग एरिया में पृथ्वी दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पेपर था जो उसने इशिका को दिया था। मिस सिंघानिया आप इसे खोलकर देख सकती हैं, पृथ्वी ने इशिका से कहा। इशिका ने पेपर को लिया और उसे खोलकर देखा तो उसमें पूरी दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर्स की लिस्ट थी जो न्यू एनर्जी पर रिसर्च कर रहे थे। इशिका ने हैरानी से पृथ्वी की तरफ देखकर पूछा, ये सब क्या है? पृथ्वी जवाब देते हुए बोला, ये सभी यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर ओशन यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर मिलर से ज्यादा अच्छे हैं। मिस्टर राजवंश की वजह से आपकी स्टडी बीच में रुक गई थी, ऊपर से आप दादी का इतना ध्यान भी रख रही हैं, तो ये एक छोटा सा फेवर समझकर रख लीजिए। आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकती हैं मिस सिंघानिया। इशिका ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कोई फेवर नहीं मांगा था। तो क्या आप प्रोफेसर मिलर के अंडर रहकर ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएट पूरी करना चाहती हैं? पृथ्वी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, जिस पर इशिका ने नामे सिर हिला दिया था। अचानक अभिमन्यु ने कहा, तो क्या आप डॉक्टर मर्चेंट के अंडर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट पूरी करना चाहती हैं मिस सिंघानिया? पृथ्वी इशिका से पहले ही जवाब में बोला, लेकिन मिस्टर राजवंश, डॉक्टर मर्चेंट इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं। अब्रॉड में कई यूनिवर्सिटी उन्हें हायर करना चाहती हैं, लेकिन वो किसी के अंडर जाकर काम नहीं करना चाहते हैं। अगर उनके कोई स्टूडेंट रहे भी होंगे तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, और मुझे नहीं लगता कि मिस सिंघानिया जैसी स्टूडेंट को वो अपनी टीम में शामिल करेंगी। बेहतर होगा कि ये इनमें से ही किसी प्रोफेसर को चुन ले। हाँ, आगे PhD करनी है तो हम डॉक्टर मर्चेंट से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट बहुत छोटी डिग्री रह जाती है। इशिका उन दोनों को अजीब नजरों से घूर रही थी। वो दोनों उसी के अंडर उसी को स्टडी करवाना चाहते थे, ऊपर से ये तक कह रहे थे कि उसे डॉक्टर मर्चेंट के अंडर इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। इशिका उनसे और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अभिमन्यु से कहा, मिस्टर राजवंश, आप मेरी परवाह छोड़कर अपना काम करेंगे तो बेहतर होगा। मैं घर जा रही हूँ, मुझे ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। इशिका ने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और वहां से चली गई। उसके जाते ही पृथ्वी ने अभिमन्यु से कहा,
मैंने सुना है आयशा अपना पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर मर्चेंट के अंडर कर रही है। ऐसा तो नहीं कि मिस सिंघानिया भी उसकी बराबरी करना चाहती हो, तभी उसे डॉक्टर मर्चेंट की गाइडेंस में पोस्ट ग्रेजुएट करना हो? मुझे नहीं लगता कि वो इसके काबिल भी है। अभिमन्यु ने पृथ्वी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी उस दिशा में देख रहा था जहां से यशिका गई थी। अचानक अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा, डॉक्टर मर्चेंट से कॉन्टैक्ट करो। क्या, लेकिन क्यों? पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु यशिका के बारे में इतना क्यों सोच रहा था। क्या वो उसकी खूबसूरती से इतना इंप्रेस हो गया था कि उसके लिए डॉक्टर मर्चेंट तक से बात करने के लिए जा रहा था? अभिमन्यु ने पृथ्वी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गया। पृथ्वी के पास अभिमन्यु की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि यशिका जैसी मामूली लड़की के लिए इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के वक्त आयशा, राधिका और नक्श एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में पहुंचे। वो यहाँ डॉक्टर मर्चेंट के साथ लंच के लिए आए थे। वहां आते ही नक्श ने अजीब नजरों से इधर उधर देखा। उसके चेहरे के बिगड़े हुए बिहेव को देखकर आयशा ने पूछा, क्या हुआ नक्श, तुम परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, नक्श ने सख्ती से कहा। नक्श के मना करने पर आयशा ने कुछ नहीं कहा। उसने राधिका से पूछा, डॉक्टर मर्चेंट कहाँ है मॉम, क्या वो अंदर है? हाँ, वो यहाँ पहले ही पहुंच गई हैं और अपने प्राइवेट रूम में हैं। चलो हम अंदर चलते हैं, राधिका ने जवाब दिया और फिर उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। नक्श और आयशा दोनों ही डॉक्टर मर्चेंट से मिलने के लिए बेताब थे। इस बात से अनजान कि वो जिस डॉक्टर मर्चेंट से मिलने के लिए इतने बेताब हो रहे हैं वो कोई और नहीं यशिका है। लगता है आज यशिका का राज खुल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी कल आएगा। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।